ओम शांति। राजयोग का मुख्य आधार परम सत्य की पहचान, क्योंकि जब कहते ही है राजयोग माना आत्मा का परमात्मा से संबंध, तो आत्मा का भी यथार्थ ज्ञान आवश्यक है, तो पिता परमात्मा का भी यथार्थ ज्ञान चाहिए। आत्मा की वास्तविकता है कि आत्मा सतो गुण स्वरूप है, सात गुणों का एसेंस समूह है। जैसे शरीर पांच तत्वों का समूह है, इसी तरह आत्मा सात गुणों का समूह है, और ये चैतन्य है। इसीलिए आत्मा को कहा आत्मा चैतन्य शक्ति है। जहां तक आत्मा का विषय आता है, वहां तक तो फिर भी हरेक धर्म में उसको स्वीकारा गया है, वहां तक कि आज विज्ञान भी इसके अस्तित्व को मानने लगा है कि हाँ, आत्मा ये एक एनर्जी इस शरीर में विद्यमान है जो ये शरीर की इंद्रियों को चलाता है, और जिसके निकल जाने के बाद इस शरीर के अंदर कोई कार्य नहीं हो सकता है। परंतु जहां परमात्मा का विषय आता है, वहां अनेक मतमतांतर हो गए हैं, और इसलिए वो परम सत्य क्या है, उसको जितना ही मनुष्य ने समझने का प्रयत्न किया है, शायद हम उतना ही उस परम सत्य से दूर तो नहीं हो गए हैं। एक कार्टून याद आता है कि एक बार एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम्स आती है, हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा हुआ है। पहली कॉलम में लिखा है नेचर इज गॉड, प्रकृति परमेश्वर है। दूसरी कॉलम में लिखा है आत्मा सो परमात्मा है, हम सो सो हम। तीसरी कॉलम में लिखा है ब्रह्म ईश्वर है। चौथी कॉलम में लिखा है कण कण में व्यापक है, हर एक में परमात्मा विराजमान है। पांचवी कॉलम में लिखा है वो निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है। छठी कॉलम में लिखा है वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवताएं हो गए वो सब परमात्मा के रूप है। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा है ईश्वर जैसा कुछ है ही नहीं। अगर सचमुच ईश्वर है तो सबूत दो। अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, सारी कॉलम पढ़ने के बाद उसने क्या निर्णय लिया होगा कि सत्य किसको कहे? क्या ये सभी सत्य है? क्या इसमें से एक सत्य है? या सत्य कुछ और है जिसको उसने समझा ही नहीं है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? क्या ये सभी को सत्य कहेंगे? क्या इसमें से एक सत्य है ये कहेंगे और बाकी सब असत्य है? या सत्य कुछ और है जिसको हमने समझा ही नहीं? जैसे वो एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार पांच सूरदास थे, उन्हें कहा गया आप हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, और इसीलिए जब हाथी घर में गए तो एक ने पैर पकड़ा, कहा हाथी खंभे जैसा है। एक ने पीठ पकड़ी तो कहा हाथी दीवार जैसा है। एक ने पूंछ पकड़ी तो कहा हाथी रस्सी जैसा है। एक ने सुंड पकड़ी तो कहा हाथी सांप जैसा है। एक ने कान पकड़े तो कहा हाथी सूप जैसा है। अब आखिर हाथी कैसा था? क्या ये सभी सत्य है? क्या इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसे वो देख नहीं पाते थे? क्या कहेंगे? क्या ये सभी सत्य है? हाथी खंभे जैसा भी है, दीवार जैसा भी है, रस्सी जैसा भी है, सांप जैसा भी, क्या सभी सत्य है? नहीं। क्या इसमें से एक सत्य है? लेकिन सत्य कुछ और है जिसको वो देख नहीं पाते थे। इसी तरह हमारे सामने भी जब परमात्मा के विषय को लेकर इतने मतमतांतर है तो सत्य किसको कहे? हम भी इसीलिए जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो यही प्रार्थना करते हैं कि हम नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, या कहते हैं हम अंधों की लाठी बनो प्रभु। ये दो नेत्र तो है, उसके बाद भी जब हम अपने आप को नैनहीन कहते हैं तो वो कौन से नैन की मांगनी करते हैं? ज्ञान के दिव्य चक्षु। कि जो ज्ञान के दिव्य चक्षु न होने कारण आज हर इंसान नैनहीन हो गया है। ये नहीं कि आज ब्रह्मा कुमारियों ने एक और मत दे दी कि हमें उसको मानना है। नहीं, हम मत नहीं देंगे, हम आज आपको एक कसौटी देंगे जिस पर कसकर देखना है सत्य किसको कहा जाता है। जैसे एक जवेरी होता है, उसके पास एक कसौटी रहती है जिस पर कसकर वो देखता है सोना कितना कैरेट का है। ठीक इसी प्रकार सत्य किसको कहा जाए वो कसौटी हम आज आपको देंगे, और वो कसौटी है पांच बातें। उस पर कसकर आप अपनी मत कर को भी देखो सत्य है नहीं तो सत्य को प्राप्त करना। उसमें सर्वप्रथम बात है कि परमात्मा उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे उसको कहेंगे परमात्मा। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो क्रिश्चियनों का भगवान अलग है तो मुसलमानों का भगवान अलग है। नहीं, गॉड इज वन, परमात्मा एक है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई चाचा, मामा, भाई, पिताजी कहता हो, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है ना। ये नहीं कि भाई कहते समय उसका स्वरूप कुछ और होगा, पिता कहने समय उसका स्वरूप कुछ और होगा, मामा जब कोई कहकर बुलाता है तो उसका स्वरूप और हो जाता है। नहीं, व्यक्ति तो वही रहेगा, स्वरूप तो वही रहेगा। ठीक इसी प्रकार गॉड इज वन, तो परमात्मा एक है जिसको सभी धर्म वाले परमात्मा के रूप में स्वीकार करे उसको कहेंगे परमात्मा। दूसरा, परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं हो, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो उसको कहेंगे परमात्मा। तीसरा, परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्व परे, अर्थात जैसे हम मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, जन्म और मृत्यु का चक्र, देह और देह के संबंधों का चक्र, कर्म और कर्म के फल का चक्र, परमात्मा अर्थात जो इन सभी चक्र से परे न्यारा है। चौथा, परमात्मा उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, जिसके पास तीनों कालों का ज्ञान है, जो तीनों लोकों का नाथ है। इसलिए ये तीन की महिमा भी उसी के साथ जाती, त्रिकालदर्शी, जो तीनों कालों का दर्शन कराने वाला है, त्रिलोकी नाथ जिसको कहते हैं, त्रिनेत्री जिसको कहते कि मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाला है, और त्रिमूर्ति यानी जीओडी गॉड जब कहते तो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, संसार के ये तीन महत्वपूर्ण कार्य जो है, स्थापना, पालना और महाविनाश, उनका भी रचयिता यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जो रचयिता है उसको कहेंगे परमात्मा। और पांचवा परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत है, सर्व गुणों का सागर जो है, सर्वशक्तिमान है, उसको कहेंगे परमात्मा। जिसके लिए मां शारदा ने कहा सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ और स्वयं मां सरस्वती बैठकर परमात्मा की महिमा लिखे तो भी अपरंपार है। इतनी अनंत जिसकी महिमा, ये पांचों बातें जिसके साथ लगे उसको कहेंगे परमेश्वर। अब ये पांचों बातें किसके साथ लगती है? एक एक मत को उठा करके हम देखें कि जब हम कहते हैं प्रकृति परमेश्वर है तो क्या प्रकृति के साथ ये पांचों बातें लगेगी? क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? किसी कवि ने बहुत सुंदर वो गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा है, वो चित्रकार कौन है? तो सत्य किसको कहें, प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है या प्रकृति उस परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? क्या कहेंगे आप? कवि वे क्या कहता है? हाँ, प्रकृति परमेश्वर की रचना है, ये सत्य है। तो प्रकृति को परमेश्वर मानना ये अज्ञान है। अज्ञानता के कारण हमने कह दिया कि प्रकृति परमेश्वर है। सत्य ये है, प्रकृति परमेश्वर की रचना है। दूसरा, जब हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये कहां तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर हम मंदिरों में जाकर ये क्यों गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे? अब सत्य किसको कहा जाए, हम ही परमात्मा है या आत्मा परमात्मा की संतान है? क्या कहेंगे? दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते हैं ना, या तो आत्मा ही परमात्मा है या तो आत्मा परमात्मा की संतान है। सत्य क्या है? आत्मा परमात्मा की संतान है। अगर ये सही है तो आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान है। कई लोग क्या समझते कि नहीं, अगर हम जीवन में पुरुषार्थ करेंगे ना तो हम परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है जो हम पुरुषार्थ करके प्राप्त कर ले ना। मनुष्य संसार के अंदर पुरुषार्थ करके कुछ भी बन सकता है, लेकिन कोई भी इंसान स्वयं का बाप बन सकता है, पिता जैसा बन सकता है, पिता जैसा बनकर पिता का कारोबार संभाल सकता है, पिता जैसा बनकर पिता की गद्दी संभाल सकता है, पिता जैसा बनकर छोटे भाई बहनों को बड़ा कर सकता है, परंतु जब वो पिता के सामने गया तब बच्चा ही रहेगा। ये नहीं कि पिता हो गया, छोटे भाई बहने भी उसको पिता के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, यही कहेंगे आप हमारे पिता समान हो लेकिन पिता नहीं हो। तो पिता समान और पिता बहुत अंतर है। इसी तरह मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करके कोई भी टाइटल प्राप्त कर सकता है। किसी ने पुण्य कर्म किया तो उसको पुण्यात्मा कहेंगे, किसी ने महान कर्म किया तो उसको महात्मा कहेंगे, किसी ने धर्म का काम किया तो उसको धर्मात्मा कहेंगे, किसी ने दिव्य कर्म किया तो देवात्मा कहेंगे। तो देवात्माएं अनेक है, धर्मात्माएं अनेक है, महात्माएं अनेक है, पुण्यात्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। परमात्माएं ये शब्द नहीं आता है, परमात्मा एक है। कई लोग समझते हैं कि नहीं, जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ऐसे हम भी परमात्मा से निकले हैं, अंत में परमात्मा में जाके समा जाएंगे। अब ये समाने वाली बात भी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, तो बुदबुदे का अस्तित्व समाप्त हो गया। बुदबुदा बुदबुदा नहीं रहा, सागर बन गया। लेकिन आत्मा के लिए कहा जाता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी सदा शाश्वत है, कि जिसका विनाश कभी नहीं होता है, न उसकी उत्पत्ति है न उसका विनाश है, अनादि स्वरूप में वो स्थित है। कहने का भावार्थ कि आत्मा का अस्तित्व सदा काल के लिए है ही है, उसका विनाश नहीं हो सकता है। तो फिर वो परमात्मा में मिलेगी कैसे? अगर परमात्मा में मिल गई तो उसके अस्तित्व समाप्त हो गया। वो समाप्त कभी नहीं होता है, वो सदा शाश्वत है, माना सदा काल के लिए है ही है, अजर अमर अविनाशी, इसलिए उसका विनाश भी नहीं हो सकता है। तो सत्य ये है कि आत्मा परमात्मा की संतान है, कोई टुकड़े नहीं है। जो हम परमात्मा से टुकड़े होकर के नीचे संसार में आ गए और फिर अंत में जाकर के उसमें मिल जाना है, तो सत्य किसको कहेंगे? आत्मा परमात्मा का अंश है कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा के वंश है कहना सत्य है? अंश माना टुकड़ा और वंश माना संतान, सत्य किसको कहेंगे? अंश कहना ठीक है, वंश कहना ठीक है? वंश कहना ठीक है। तीसरा, जब हम कहते ब्रह्म ईश्वर है, ये कहां तक सत्य है? पांच तत्वों की दुनिया से पार एक छठा तत्व है जिसको ब्रह्म महतत्व कहते हैं। तो क्या परमात्मा तत्व है, या उस तत्व में निवास करने वाला तथ्य है? इसीलिए तो भगवान की महिमा में भी यही गाते हैं, पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर। अब सत्य किसको कहेंगे? ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है, या पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर कहना सत्य है? पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर कहना सत्य है। इसीलिए तो उसकी महिमा में गाते, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, जिसका धाम भी इतना ऊंचा है, ऊंचे ते ऊंचा भगवन। तो सभी आत्माएं भी उस ब्रह्म महतत्व में निवास करती है, जैसे आसमान में सितारे हैं, इसी तरह ब्रह्म महतत्व में भी हर आत्मा अपने असली स्वरूप में एक प्रकाश पुंज के रूप में निवास करती है, और पिता परमात्मा भी वहां प्रकाश स्वरूप में निवास करते हैं। तो सत्य ये है, पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर कहना सत्य। चौथी बात, जब हम कहते हैं कण कण में व्यापक है, सब में ईश्वर है, कहां नहीं है? क्या सब में ईश्वर है? कूड़े कचरे जानवर आदि सब में ईश्वर है? आज कोई हमें कह दे कि फलाना व्यक्ति तो जानवर जैसा है, अगर जानवर जैसा कहा तो भी हमको इंसल्ट फील होता है। इंसल्ट फील होता है कि नहीं होता है? अपमान महसूस होता है कि अरे इसने मेरे को जानवर जैसा कह दिया। और हम भगवान को कहते हैं जो ऊंचे से ऊंची हस्ती है, उस ऊंचे से ऊंची हस्ती को कह दिया वो जानवर में भी है, कूड़े कचरे में भी है, तो क्या ये भगवान का इंसल्ट नहीं है? है कि नहीं है? कितना परमात्मा का भी अपमान करते आए। और अगर सब में ईश्वर विराजमान हो, फिर एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति का खून करता है तो ये कर्म किसका? दोनों में अगर आत्मा भी है, दोनों में अगर परमात्मा भी है, तो ये कर्म आत्मा का या परमात्मा का, किसको कहें, किसका कहेंगे? आत्मा का कहेंगे या परमात्मा का कहेंगे? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है तो उस वक्त अंदर बैठा परमात्मा क्या कर रहा था? क्या सर्वशक्तिमान की इतनी भी शक्ति नहीं है जो एक व्यक्ति को बुरे कर्म से रोक सके? आज घर में अगर बच्चे हो, बच्चे आपस में लड़ झगड़ रहे हो, माँ पिता सामने बैठे हो, तो लड़ने देंगे या छुड़ाएंगे? क्या करेंगे? छुड़ाएंगे ना। भगवान अगर हमारा माँ पिता है, वो अगर सब में बैठा हो और इतना मनुष्य एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है और वो छुड़ाए ही नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? सर्वशक्तिमान की इतनी भी शक्ति नहीं कि जो आत्मा को बुरा कर्म करने से रोक सके, तो फिर उसका बैठने का कोई मतलब क्या मतलब है? आज अनजाने पन में भी कोई हमें कुछ कहता है और हमें मालूम नहीं होता है, तो हम क्या कह देते हैं? हम यही कह देते हैं, ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? कहते हैं कि नहीं कहते? कभी गलती से भी कहा नीचे वाला जाने, ऊपर वाला जाने? अनजाने पन में भी हम यही कहते हैं, ऊपर वाला जाने, नीचे वाला जाना कभी नहीं कहा। इसीलिए तो श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने वायदा दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तब तब मैं अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना कराने आता। अगर वो यही है तो आएगा कहाँ से और कौन आएगा? अगर वो यही है तो उसके होते इतना अधर्म कैसे? होना ही नहीं चाहिए इतना अधर्म। फिर तो गीता के ये महावाक्य झूठे हो जाए कि यदा यदा ही धर्मस्य। आज देखो प्रकृति के अंदर भी ये विशेषता है कि अपने गुणों को ट्रांसफर कर सकती है। अग्नि के अंदर लोहा रख दो तो अग्नि का गुण लोहे में आ जाएगा, लोहा भी एकदम लाल और गर्म हो जाएगा। क्या परमात्मा जो सर्व गुणों में अनंत है, उसके कोई गुण और शक्ति वो ट्रांसफर नहीं कर सकते? मनुष्य भी थोड़े दिन किसी के संग में रहता है तो उसका संग का रंग लग जाता है। परमात्मा अगर हम सब में विराजमान हो तो क्या उसका कोई गुणों का संग का रंग हमें नहीं लगता है? आज मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षी भी थोड़े दिन किसी के संग में रहते तो उसको भी संग का रंग लग जाता है। कहानी याद आती है कि एक बार एक शिकारी जंगल से दो तोता पकड़ कर ले आया, बाजार में बेचने बैठा। एक तोते को एक महात्मा अपने आश्रम पर ले गए, दूसरे तोते को एक बदमाश अपने अड्डे पर ले गया। थोड़े दिनों के बाद देखा गया कि जो तोता महात्मा के आश्रम पर गया था वो राम राम बोल रहा था, भजन गा रहा था, आरती गा रहा था, और जो तोता बदमाश के अड्डे पर गया था वो सुबह सुबह ही गालियां बोल रहा था। तो पशु पक्षी भी थोड़े दिन किसी के संग में रहते तो उसको भी संग का रंग लग जाता है। तो क्या परमात्मा अगर हम सब में विराजमान हो और वो गुणों में अनंत हो और उसके कोई गुणों का संग का रंग हमें न लगे, ऐसा कभी हो सकता है? संभव। तब फिर मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं, फिर शास्त्र में ये बात जो आई सर्व व्यापकता की, क्या ये झूठी है? झूठ भी नहीं है। अगर सच भी नहीं है, झूठ भी नहीं है, तो सत्य क्या? सत्य ये है कि कहा जाता कि पहले के समय में ऋषि मुनि जब तपस्या करने बैठते थे तो आने वाले कली काल को देख सकते हैं कि कितना घोर पापाचार का युग होगा, और उस समय मनुष्य को पाप कर्म से बचाएं कैसे। तब उन्होंने शास्त्र में ये बात को लिख दिया कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना कि तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सब जगह है, वो तुझे देख रहा है। ताकि इंसान को एक डर रहे कि भगवान मुझे देख रहा है और पाप कर्म कम करे, तो बड़ी शुभ भावना के साथ ये बात शास्त्र में लिखी गई थी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब घुटना करना सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर चला जाता है, और माँ को ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं बच्चा बाहर न निकल जाए, रास्ते पर न चला जाए। तो वो क्या करती है, बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है, एक कुत्ता दिखाती और कहती है, देख बाहर गया ना, ये कुत्ता उठा के ले जाएगा। और उस बात को वह बच्चा सच समझ लेता है, इसलिए अगर घुटने करता हुआ दरवाजे तक जाता भी है, कुत्ते को देखते ही क्या करेगा, अंदर आ जाएगा, और उसी में उसकी सुरक्षा है। माँ को ध्यान कम देना पड़ता है और बच्चा सुरक्षित रहता है। लेकिन वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 4-5 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा वो बच्चा, हंसता है अपनी माँ पर, मेरी माँ भी कैसी है, इतना भी समझती नहीं है कि कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला थोड़ी है। लेकिन पहले उसने वही बात को सच मान लिया था और उसने सुरक्षित रहा था, लेकिन अब वो अपनी माँ पर हंसता है क्योंकि थोड़ा समझदार हो गया ना, तो बाहर जाकर कुत्ते के बच्चे को उठाकर घर में ले आएगा, बोला देखो, है ना। ठीक इसी प्रकार जब आरंभ में ऋषि मुनियों ने कहा कि हे मानव, भगवान देख रहा है तुम पाप कर रहा है, तो वो नहीं करता था। और अगर कोई उसको पाप करने लिए कहता भी था तो भी क्या कहता है, अरे मैं बाल बच्चे वाला हूँ, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, ये पाप मैं नहीं करूंगा, ईश्वर भी मुझे देख रहा है, ऐसे कहता था। और आज क्या कहता है, आज समझदार हो गया ना, विज्ञान का युग आ गया तो मनुष्य की बुद्धि विकसित हो गई, तो समझदार हो गया है, तो क्या कहता है, बाल बच्चे वाला हूँ, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा, और भगवान अगर मुझे देख रहा है तो छुड़ाए ना मुझे। डायलॉग वही है, पहले भी यही कहता था, बाल बच्चे वाला हूँ, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, पाप में नहीं करूंगा, नहीं तो मुंह क्या दिखाऊंगा लोगों के सामने समाज में। और आज कहता है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा, बाल बच्चे वाला हूँ, समाज में रहना, इज्जत से जीना है। शब्द वही है, भाव और भावना में अंतर आ गया है ना। अर्थात कहने का भावार्थ ये है कि सर्वव्यापकता की बात भी एक भावनात्मक सत्य है, कि ऋषि मुनियों ने ये बात शास्त्र में इसलिए कही थी ताकि मनुष्य अगर इस भावना को लेकर के चले तो कभी पाप कर्म नहीं करेगा। लेकिन आज वो भाव और भावना खत्म हो गई और सिद्धांतिक रूप में खाली एक कहावतें रह गई, ईश्वर सब जगह है। पांचवी बात, जब हम कहते हैं निराकार है, न नाम है, न रूप है, न आकार है, नाम रूप आकार बिना कोई चीज है इस संसार के अंदर, हवा जो दिखाई नहीं देती है, फिर भी एक चित्रकार को अगर चित्र निकालना है और उसको चक्रवात तूफान दिखाना है, तेज हवा दिखानी है, तो दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है? कि चित्र को देखकर कहेंगे बड़ी तेज हवा चल रही है, और शांत प्रकृति दिखानी है तो भी दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है? कि चित्र को देखकर कहेंगे कि जैसे हवा चल ही नहीं रही है, इतनी शांत प्रकृति है। तो जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र में ढाल सकता है, तो क्या परमात्मा स्वयं ही नाम रूप आकार बिना होगा? तो फिर उसका नाम रूप आकार कौन सा है? जिस प्रकार एक मनुष्य का पिता मनुष्य है, एक पक्षी का पिता पक्षी है, इसी प्रकार आत्मा का पिता परम आत्मा, वो भी एक आत्मा है। जैसे आत्मा का स्वरूप अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप ज्योति पुंज प्रकाश पुंज है, ऐसे उसके पिता का स्वरूप भी ज्योति पुंज प्रकाश पुंज है, जिसकी पूजा भारत में ज्योतिर्लिंगम के रूप में की गई। ज्योतिर्लिंगम याने जो ज्योति का स्वरूप है, वो तेज, वो प्रकाश, वो परमात्मा का दिव्य स्वरूप है, जिसको नाम दिया सदा शिव, यानी जो सदा कल्याण करने वाला है, गुणवाचक नाम है। आज मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं होते हैं। किसी का नाम होगा शांति भाई, लेकिन जीवन में होगी अशांति, टेंशन ही टेंशन होगा। किसी का नाम होगा अमीर चंद, लेकिन होगा फकीर। तो मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं है, जबकि परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है। सदा शिव यानी जो सदा कल्याण करने वाला परमात्मा। इसलिए भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगम विशेष पूजे जाते हैं, या आज भी एक महान तीर्थ स्थान बन गया। नॉर्थ में जाएंगे अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, जो अमर आत्माओं का नाथ है। साउथ में जाएंगे तो श्री रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है, कि जिसकी पूजा स्वयं श्री राम ने भी की। ईस्ट में जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, और वेस्ट में जाओ तो सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। भारत से बाहर जाओ नेपाल में तो पशुपति नाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। जितने भी परमात्मा के मंदिर है, वो मंदिरों के नाम भी गुणवाचक है, कर्तव्यवाचक है, और मंदिरों के नाम का एंडिंग या नाथ या ईश्वर में होता है। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलानाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ या ईश्वर, रामेश्वरम, गोपेश्वरम, विश्वेश्वरम, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, सब शिव के मंदिर है। जो सर्व का नाथ और ईश्वर है, वो एक ही परमात्मा। देवताओं की पूजा को अगर देखेंगे, स्टेट वाइज हो गई है ना। नॉर्थ में जाएंगे श्री राम कृष्ण की पूजा अधिक प्राप्त होगी, लेकिन साउथ में जाएंगे तो श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी। तो ईस्ट में चले जाओ कलकत्ता के तरफ, काली पूजा, दुर्गा पूजा मिलेगी। तो वेस्ट में चले जाओ गुजरात महाराष्ट्र में, गणेश पूजा अधिक मिलेगी। साउथ में कार्तिकेय की पूजा मिलेगी। तो देवताओं की पूजा सब स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में। इसीलिए उनको कहते ही है देवों का भी देव महादेव, जिसकी पूजा देवताओं ने भी की। रामेश्वरम में पहुंचकर लंका जाने से पूर्व श्री राम ने भी शिव की पूजा की। क्यों? अगर श्री राम भगवान थे तो उन्हें पूजा करने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि स्वयं श्री राम भी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि जिसके सामने मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, रावण, जिसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वो ऐसे ही घमंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शक्ति स्वयं रावण की भी नहीं है। रावण ने भी वो शक्ति कहाँ से प्राप्त की थी? शिव से। इसीलिए वो जानते थे कि रावण के पास परमात्मा शक्ति है, और उस परमात्मा शक्ति का मुकाबला अगर मुझे करना है तो मैं अपनी दैवी शक्ति से परमात्मा शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। तभी उन्होंने सर्वप्रथम शिव की पूजा की, वो शक्ति को प्राप्त किया और उसके बाद रावण के ऊपर विजयी हो सके। इसी तरह कुरुक्षेत्र के मैदान में चले जाओ, आज भी वहां स्थानेश्वर का मंदिर है। स्थानेश्वर का मंदिर क्यों है? तो कहते यहाँ पर महाभारत के युद्ध के पहले श्री कृष्ण ने भी शिव की पूजा की थी, पांडवों से भी कराई और उसके बाद महाभारत युद्ध आरंभ हुआ। अगर श्री कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने शिव की पूजा क्यों किया? क्योंकि अधर्म पर विजय प्राप्त कराना था। इसी तरह जिन देवियों की पूजा हम करते हैं, नव दुर्गे जिसको कहा, नवरात्र में जितने पूजा करते हैं, ये देवियां कौन थी? तो कहते हैं जब संसार में असुर बढ़ गए थे तो शिव ने अपनी शक्तियों को उत्पन्न किया, सारे संसार में फैला दिया और इसीलिए असुरों का संहार करने वाली ये शिव शक्तियां हैं। तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वो है महादेव। लेकिन यहाँ भारतवासी एक गलती करते हैं, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जहाँ दोनों का नाम भी अलग है, शिव और शंकर, जहाँ दोनों का स्वरूप भी अलग है, एक है ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष, जहाँ दोनों का कर्तव्य भी अलग है, एक है भोलेनाथ सदा कल्याण करने वाले और एक है कि जब तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश होता है। तो एक है कल्याण करने वाले, एक है विनाश करने वाले, तो एक कैसे हो सकता है? अगर शंकर ही महादेव थे तो फिर कैलाश पर्वत पर बैठकर उन्होंने किसकी आराधना की? तो यही दिखाया जाता है कि कैलाश पर्वत माना ही जो दुनिया का सबसे महान ज्योतिर्लिंगम है, उन्होंने भी वहां बैठकर उस ज्योतिर्लिंगम परमात्मा का ध्यान किया था और वो शक्ति को प्राप्त किया था। शंकर को शक्ति की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि एक महत्वपूर्ण कार्य उन्हें दिया गया था कि आंख खोलते ही महाविनाश होना चाहिए, तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब ये कार्य कर सकते हैं। कहने का भावार्थ कि शंकर ने भी शिव का ध्यान लगाया था। अमरनाथ की यात्रा पर जब लोग जाते हैं तो अमरनाथ का महत्व इतना क्यों है? तो दिखाते हैं कि वहां पर शंकर ने पार्वती जी को अमरनाथ की कथा सुनाई थी, जिसके साक्षी वो दो कबूतर है। अब शंकर ने पार्वती जी को कौन से अमरनाथ की कथा सुनाई? इसका मतलब अमरनाथ और शंकर एक है या अलग है? अगर शंकर ने भी पार्वती जी को अमरनाथ की कथा सुनाई तो अलग हुए ना, तभी तो कथा सुना सके, जिसके साक्षी वो दो कबूतर है। तो शिव और शंकर दोनों एक नहीं, अलग है। लेकिन आज मनुष्य आत्माएं इन्हीं अनेक प्रकार के ब्रह्म के अंदर जीने लगते हैं और तब वो परमात्मा और देवात्मा में अंतर महसूस नहीं कर पाते हैं। एक कहानी याद आती है कि एक बार एक भिखारी था और उसका नियम था रोज राजा के द्वार पर जाकर भीख मांगने। राजा का भी नियम था कि मेरे द्वार पर जो आएगा कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, उसे कुछ न कुछ देना जरूर है। हर रोज कुछ न कुछ देते थे। एक दिन भिखारी के मन के अंदर विचार आया, ये राजा लाता कहाँ से है, उस स्रोत को मुझे भी जान न लेना चाहिए, ताकि मुझे भी मांगना ही न पड़े, उस स्रोत से मैं ही प्राप्त कर लूं डायरेक्ट। तो एक दिन वो जल्दी पहुंच गया, 6 बजे में पहुंच गया। द्वारपाल से पूछा कि द्वारपाल तुम मुझे ये बताओ कि इस वक्त राजा कहाँ होगा और क्या करता होगा। द्वारपाल ने कहा राजा वो तो मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे हैं, उसने सोचा जरूर वहां कोई स्रोत होगा जिससे प्राप्त करके सारा दिन सबको देते रहते हैं। उसने पूछा मैं वहां जा सकता हूँ? कहा क्यों नहीं जा सकते, लेकिन पीछे बैठना, आगे नहीं जाना। कहा मैं पीछे ही बैठूंगा। पीछे जाकर के बैठ गया। उसी वक्त राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी झोली सदा भरतू रखना ताकि मैं अनेकों की झोली भर सकूं। जैसे ही भिखारी ने ये बात सुनी, उठ करके बाहर आ गया। द्वारपाल ने देखा, पूछा अरे बड़ा जल्दी बाहर आ गया, क्या बात थी बताओ? तो कहने लगा अरे आज ये मैंने पहली बार देखा कि राजा भी भिखारी है, वो भगवान से मांग रहा है, भगवान उसकी झोली इतना भर रहा है, वो हमारी झोली तो इतनी भरता है, तो मैं भी भगवान से डायरेक्ट क्यों ना मांगू। फिर चलते चलते भिखारी के मन में विचार चलने लगे कि ये राजा जो पूजा कर रहे थे वो तो हनुमान जी की पूजा कर रहे थे, इसका मतलब हनुमान जी ने राजा की झोली भरी, राजा ने हमारी झोली भरी, लेकिन हनुमान जी की झोली किसने भरी? कहा वो तो राम भक्त थे, इसका मतलब श्री राम ने हनुमान जी की झोली भरी, हनुमान जी ने राजा की झोली भरी और राजा ने हमारी झोली भरी। फिर विचार आया श्री राम की झोली किसने भरी? तो कहा उन्होंने तो भोलेनाथ को याद किया था, इसका मतलब भोलेनाथ के और भक्त भी है, उसमें से एक हिस्सा श्री राम को मिला होगा, श्री राम के भी तो इतने सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा हनुमान जी को मिला होगा, हनुमान जी के भी इतने सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा राजा को मिला होगा, राजा को भी तो इतने सारे भिखारियों को देना पड़ता है, तो एक हिस्सा मेरे पास आया। तो भिखारी सोच में पड़ गए ये वाया वाया में सब कट हो रहा है, इसलिए डायरेक्ट कनेक्शन भोलेनाथ को याद करना है ना, तो कहीं हम भी वाया वाया में तो नहीं अटक गए? अगर वाया वाया में अटक गए होंगे तो कितना मिलेगा, तो आज के बाद क्या करेंगे? हाँ, डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो ना भोलेनाथ के साथ, ठीक है ना। जैसे वो राजा अकबर की और बीरबल की कहानी याद आती है कि एक बार राजा अकबर ने हे परवरदिगार, परमेश्वर को संबोधित किया है, हे परवरदिगार नूरे इलाही मेरा हज कबूल हो, और तब उनका हज कबूल होता है। परवरदिगार परमेश्वर के लिए कहा नूरे इलाही, नूर का मतलब है तेज, कि जो नूर है तेजोमय है, तो जिसको मुसलमानों ने नूर कहा हिंदुओं ने ज्योतिर्लिंगम कहा, ज्योति का मतलब भी क्या होता है तेज, तो जिसको हमने ज्योति कहा उन्होंने नूर कहा, बात तो एक ही हो गई अलग हो गई। और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म में कहा जाता है कि जब मोसेस माउंटेन पर गया था जहां उनको 10 कमांडमेंट्स मिले थे पर्वत के ऊपर, वहां उन्होंने अखंड प्रकाश का साक्षात्कार किया, जिस प्रकाश को देख करके मोसेस ने कहा यहोवा यानी द सुप्रीम लाइट। इसीलिए क्राइस्ट ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने यही कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं तो पैगंबर हूं। और इसीलिए जब उनको क्रॉस पर चढ़ा रहे थे तब भी उन्होंने भगवान से अपनी प्रार्थना में यही कहा हे प्रभु आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं। हे प्रभु किसको कहा? जिसको क्रिश्चियन लोगों ने लाइट कहा। और इसीलिए आज भी चर्च में जाएंगे, वेटिकन में चले जाओ, रोम में जहां सबसे बड़ा चर्च माना जाता है, वहां पर एक सूर्य की आकार का बहुत बड़ा प्रकाश स्वरूप है, इसलिए चर्च के अंदर वो मोमबत्ती जलाते हैं, उसमें भी एक बड़ी मोमबत्ती होती है, बाकी सब छोटी छोटी मोमबत्तियां होती है। बड़ी मोमबत्ती परमात्मा का प्रतीक है, छोटी मोमबत्ती आत्माओं का प्रतीक है। जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात तो एक ही हो गई। कि अलग अलग हो गया। और आगे जाए गुरु नानक देव ने तो बड़े स्पष्ट शब्द में भगवान की महिमा गाई है, जितना स्पष्ट और किसी ने नहीं गाया, कि एक ओमकार निराकार निर्वैर सतनाम अकाल मूरत, जिसको काल कभी नहीं खा सकते हैं वो निराकार स्वरूप है, निर्वैर स्वरूप है, वही एक सत्य नाम है, एक ओमकार है। और आगे जाए महावीर स्वामी ने किसका ध्यान लगाया था, किसके ऊपर अपने मन को एकाग्र किया था। जैनी लोग यही दर्शाते हैं कि सिद्ध शिलापति जिसको कहते, सिद्ध शिलापति माना जो सर्वश्रेष्ठ है। आज भी दिवाली के दिन जब महावीर स्वामी का निर्वाण दिन मनाते हैं तो जैनी लोग अपनी प्रार्थना में यही कहते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया है वो गति हमें भी प्राप्त हो। वो शिव धाम कौन सा है, वो शिव कौन है। इसी तरह महात्मा बुद्ध ने भी कभी मूर्ति पूजा के लिए नहीं कहा, लेकिन आज भी जापान चले जाओ, 3 फुट की ऊंचाई पर और 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है जिसको कहते हैं चिंकोन शेकी। चिंकोन शेकी का मतलब है कि जिसका ध्यान लगाने से हमें शांति प्राप्त होती है। पारसियों की अग्यारी में चले जाओ तो कहा जाता है कि पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे, और आज भी जब उनकी नई अग्यारी स्थापन होती है तो जलती हुई ज्योत को ले जाकर के वहां स्थापित करते हैं, अखंड ज्योत जिसको कहते हैं। जिसको किसी ने अखंड ज्योत कहा, किसी ने चिंकोन शेकी कहा, किसी ने सिद्ध शिलापति कहा, किसी ने निराकार कहा, किसी ने लाइट कहा, किसी ने नूर कहा, किसी ने ज्योतिर्लिंगम कहा, बात तो एक ही हो गई या अलग अलग है। तो सर्व धर्म मान्य, जिसको सभी धर्म वालों ने परमात्मा के स्वरूप में स्वीकार किया है, वो कौन सा स्वरूप है। चाहे उसको गॉड कहो, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, प्रभु कहो, मालिक कहो, जो भी कहो, लेकिन है तो उस एक निराकार स्वरूप में उसकी मान्यता, जो देवों का भी देव महादेव है, वही सर्वोच्च शक्ति है जिसको काल कभी नहीं खा सकता है, जिसके तरफ सभी ने अपनी अंगुली का इशारा करके दिखाया। इसीलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू माना जो स्वयं प्रकट हुआ है, जिसको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। तो जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक है, वही सभी चक्रों से पर है। संसार में अनेक चक्र है, जन्म और मृत्यु का चक्र, देह देह का संबंधों का चक्र, कर्म और कर्म के फल का चक्र, पाप और पुण्य का चक्र, सुख और दुख का चक्र। मनुष्य आत्माएं ये सभी चक्र में आते हैं, जबकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान वाच है, हे अर्जुन मैं अजन्मा हूँ, काल मुझे नहीं खा सकता है, मैं कालों का काल हूँ, मैं अव्यक्त हूँ, व्यक्त देह मेरे पास नहीं है, मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, न कर्म करता हूँ न उसका फल भोगता हूँ। ये वर्णन जब भगवान अपने विषय में कर रहे थे तब अर्जुन को भी संशय आया कि हे प्रभु, आप तो जन्मधारी देहधारी हम सभी के सदृश है, आप तो कर्म भी करते हैं, फल भी भोगते, फिर आप ये शब्द कैसे कह सकते हैं, मुझे आपका वास्तविक रूप दिखाओ। तब कहा जाता है कि हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप का साक्षात्कार भगवान ने अर्जुन को कराया, जिसका तेज स्वयं अर्जुन भी सह नहीं सका और कहा बस करो प्रभु, ये तेज मैं सह नहीं सकता। तो जो हजारों सूर्य से तेजोमय और इसीलिए जब अपने जन्म के विषय में भगवान बताते हैं तो यही कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा जन्म मनुष्य सदृश नहीं है, मैं किसी माता के गर्भ के द्वारा जन्म नहीं लेता हूँ, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। और दिव्य और अलौकिक किसको कहा? तो कहा, मैं अति साधारण मनुष्य तन का अपना आधार बनाता हूँ और पर काया प्रवेश करता हूँ, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते हैं और मुझे साधारण समझ लेते हैं। तो परमात्मा का जन्म भी दिव्य और अलौकिक है, मनुष्य सदृश नहीं है, वो पर काया प्रवेश करके अपने वचन को निभाता है। परंतु पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, सर्व गुणों में अनंत है। शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती है और ये तीन लकीर यानी जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, जिसके पास समय के चक्र का संपूर्ण ज्ञान है, तीनों कालों का ज्ञान है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, और वो सत्य ज्ञान होने कारण ही उसको सत्यम कहा। उन तीन लकीरों के बीच में एक आंख होती है, अर्थात मनुष्य आत्मा को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करने वाला वो परमेश्वर है, जिस नेत्र से मनुष्य भी कल्याण का दर्शन कर सकता है, इसलिए उसको शिवम कहा। और उसकी पूजा में तीन पत्र का बेल पत्र चढ़ता है, जो डंडी के साथ जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होना चाहिए, अर्थात के परमात्मा के ये तीन कर्तव्य जो है, जीओडी गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, अर्थात ये तीनों देवताओं के भी जो रचयिता है, और उसकी हर रचना अति सुंदर होने कारण उसको सुंदरम कहा। तो सत्यम शिवम सुंदरम उसी परमेश्वर के लिए कहा। और वही सर्व गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है, सर्व गुणों में अनंत। ज्योमेट्री के अंदर एक बिंदु को कहा जाता है इन्फिनिट, कि जिसकी मेजरमेंट नहीं होती है, और इसलिए परमात्मा को भी कहते हैं वो बिंदु, परंतु गुणों में सिंधु अनंत है। विज्ञान के अंदर कहा जाता है कि सबसे सूक्ष्म ते सूक्ष्म अणु है, और जितना ही अणु सूक्ष्म है उतना ही वो शक्तिशाली है। आज अणु शस्त्र जो बने हैं इसी अणु शक्ति के आधार पर है, जो कितना नुकसान करता है, शक्तिशाली है। कहा जाता है जितना एटम को फ्यूज किया जाता है उतना वो अधिक शक्तिशाली बनता जाता है। परमात्मा के लिए भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि हे अर्जुन, मैं सूक्ष्म ते सूक्ष्म अणु से भी सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म हूं, और इसीलिए सर्वशक्तिमान है। तो जिसके लिए कहा सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं मां सरस्वती बैठकर परमात्मा की महिमा लिखे, तो भी वो असमर्थ है। कितनी अनंत महिमा जिसकी है, वो एक परमात्मा की ही है। तो ये है परमात्मा का संपूर्ण बायोडेटा। किसी के भी परिचय में पांच बातें पूछी जाती है, आपका नाम क्या है, फिर हरेक का फोटो जरूरी होता है, वही है या दूसरा है, तीसरा क्वालिफिकेशन, चौथा एड्रेस, और पांचवा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। तो आज परमात्मा के भी संपूर्ण परिचय में ये पांच बातों को देखा कि जिस चैतन्य शक्ति का नाम गॉड, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, जो भी कहो, सदा शिव, और उसका स्वरूप जो है अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप प्रकाश स्वरूप नूर लाइट जो भी कहो, उसके क्वालिफिकेशन सर्वधर्म मान्य सर्वोच्च सर्वोपरि सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत सर्वशक्तिमान, ये उसके क्वालिफिकेशन है। उसका निवास स्थान पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर जो ऊंचे से ऊंचा स्थान है वहां निवास करता है, और उसका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है तो यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब अधर्म का नाश करना और सत धर्म की स्थापना कराना, तो ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना का कर्तव्य, विष्णु द्वारा उस नई सृष्टि की पालना का कर्तव्य, और शंकर द्वारा उस पुरानी सृष्टि का महाविनाश का कर्तव्य कराने वाला कौन? परमात्मा। इसीलिए परमात्मा की महिमा में गाते हैं करण करावन हार, तो खुद करता नहीं है कराता है, इसीलिए खुद उस बंधन में बंधता नहीं है। तो ये है परमात्मा का संपूर्ण परिचय।